SBS हिंदी।
भारत में जन्मी अमेरिका में रहने वाली मशहूर लेखिका मृदुल कीर्ति आजकल ऑस्ट्रेलिया प्रवास पर हैं। मृदुल जी ने अब तक 16 किताबें लिखी हैं जो भारतीय धर्म, दर्शन और संस्कृति को जनमानस की भाषा में उपलब्ध कराती हैं। और हाँ, इस बार वे 7वीं पुस्तक के साथ हमारे साथ हैं। मृदुल जी, सबसे पहले SBS रेडियो ऑस्ट्रेलिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
इसके लिए जितार्थ जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और उससे अधिक धन्यवाद मैं ऑस्ट्रेलिया के श्रोताओं को देती हूँ कि ईश्वर की कृपा से 1.5 वर्ष पहले जो मैं योग दर्शन का परिचय दिया था, तो दोबारा विवेक चूड़ामणि लेकर आई हूँ आप लोगों के पास।
आपकी जो 7वीं किताब है विवेक चूड़ामणि, बड़ा मुश्किल सब्जेक्ट है, लोगों को समझ में आना भी बड़ा मुश्किल होता है कि है क्या ये और क्या बता देता है। तो अगर साधारण शब्दों में मैं आपसे पूछूं कि ये आपकी किताब क्या है, क्यों लिखी आपने, क्या प्रयोजन है इसको लिखने का और क्या हासिल होता है इससे?
देखिए, ये मूलतः तो देह भाव से आत्म भाव तक जाने की यात्रा है। और क्या मिलता है, ये तो आदि गुरु शंकराचार्य का आप ग्रंथ पढ़ें तब आप जानेंगे कि इनका जो ब्रह्मवाद है, अद्वैतवाद है, वो हमारी आत्मा में क्या क्या स्फुरना, क्या संदेश, क्या आध्यात्मिकता, और किस तरह हमें जगत के विकारों से बचाकर आत्मभाव में ले जाता है, अध्यात्म में ले जाता है, ये पढ़ने से ही पता चलता है। और आदि गुरु शंकराचार्य के ग्रंथ तो आप उठाकर देखें तो रोमांच होता है कि 32 वर्ष की उम्र में भी उन्होंने क्या क्या कर दिया। लेकिन मैं बहुत भाग्यशाली हूँ ये कहने में कि ये विश्व का सर्वप्रथम ब्रह्मवाद और अद्वैतवाद काव्य है, जो उनके मूल सूक्तों को और मूल मंत्रों को मैं दोहे और चौपाई छंद में लाई हूँ।
और क्या अर्थ है, अगर आज की मॉडर्न जो दुनिया है, ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले भारतीय मूल के जो लोग हैं उनके संदर्भ में अगर मैं समझने की कोशिश करूं तो ये हमें क्या सिखा देता है?
आप जगत में कितना बिखराव, कितना भटकाव, कितनी त्रासदी, कितना परेशान है इंसान, हर कोई शांति की खोज में है क्योंकि वो सत्य से भटक गया। तो वो सब, वो भटकाव को रोककर सही राह पर चिंतन को, विचार को और जीवन शैली को लाने के भी केवल और केवल एक राह है, अध्यात्म और ज्ञान पूर्वक जीना। तो ये धर्म ग्रंथ जो है वो हमें ज्ञान पूर्वक जीना सिखाते और जो हमारी भौतिकता और अज्ञान को कम करते हैं।
अज्ञान को, इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, अज्ञान को कैसे कम किया जाए? मेरे जैसा व्यक्ति या हमारे सुनने वाले लोग जो हैं वो अपने अज्ञान को किस तरह से दूर करें, क्या सूक्तियां हैं जो हमें आगे बढ़ने की राह दिखाती हैं?
विवेक चूड़ामणि के संदर्भ से, क्योंकि आपने पहले विवेक चूड़ामणि की बात की
जी,
मेरे अन्य ग्रंथों के अलावा, तो मैं विवेक चूड़ामणि के संदर्भ से अगर बात करूँ तो मैं उन्हीं की ही बात करती हूँ। जैसे हम देहाशक्ति में फंसे हुए हैं, भौतिकता में फंसे हुए हैं,
यानी कि अगर हम अंग्रेजी में समझना चाहें तो फिजिकलिटी में, शारीरिक, भाई खाना अच्छा चाहिए, पहनने को अच्छा चाहिए, गाड़ी अच्छी चाहिए, इस चीज़ में फंसे,
बस इसी को जीवन समझते हैं। लेकिन हम वस्तुतः, हमें ज्ञान क्या सिखाता है कि हम तो हर पल फूट रहे हैं, और जो हम जगत के प्रलोभन में ये भूल जाते हैं कि हम हर क्षण टूट रहे हैं, और जब पूरे टूट जाते हैं, घड़ा पूरा टूट जाता है, तो उसको मृत्यु मानते हैं, जबकि ज्ञान हमें कहता है तुम हर क्षण, क्षणिक क्षणिक तुम क्षय हो रहे हो। तो अध्यात्म और भौतिकता में जो बीच की रेखा है वो उसको पार करने के बाद ही आपको समझ में आता है कि हम कितने अज्ञान पूर्वक जी रहे हैं।
आप जो कह रही हैं वो ही शायद विज्ञान भी कहता है। विज्ञान कहता है कि जो ह्यूमन बॉडी है, जो मानव शरीर है, वो डीके करता रहता है, हर बार थोड़ा थोड़ा कम होता रहता है जैसे जैसे आयु बढ़ती है।
तो यही देहाशक्ति की निंदा का पूरा एक अध्याय है विवेक चूड़ामणि में। उसमें शरीर पोषणार्थी सनग्रह आत्मानम दृद्रक्षति ग्राहम दारुधिया धृतो नदीम चतुर स गच्छति, इसको मैं धीरे धीरे इसलिए पढ़ रही हूँ जिससे श्रोताओं को थोड़ा सा स्पष्ट हो जाए। इसका काव्यानुवाद सुनिए कि अभी जो जितेंद्र जी आपने कहा कि कैसे हम शांति पा सकते हैं, तो जो देहाशक्ति में है तो उनका अब ये अनुवाद सुनिए जो अब आपको मैंने मूल मंत्र सुनाया था कि रत शरीर पोषण मगर आत्म तत्व की चाह और पार करत नद पकड़ जस काष्ट बुद्धि से ग्रह। जैसे आप नदी पार कर रहे हैं और नदी पार करने में एक मगरमच्छ जो है, लेकिन आपकी बुद्धि भ्रमित है जगत के संदर्भ में, देहाशक्ति में है, तो आपकी बुद्धि पर एक माया का वो चढ़ा हुआ जिससे आप यथार्थ नहीं देख पाते। उस यथार्थ ना देख पाने के कारण आप मगरमच्छ को ही एक लकड़ी का लट्ठा समझ लेते हैं और उसको पकड़ के चाहते हैं हम नदी पार कर रहे हैं, तो फिर परिणाम क्या होगा? ये गति हमारी है।
क्या परिणाम होता है? मगरमच्छ खा जाता है।
मगरमच्छ खा जाता है, जिसको आप सोच रहे हैं ये हमें भौतिक चीजें पार लगाएंगी, यही आपको डुबो देती हैं।
अगर आप ये सब लिखती हैं, इन सब की जानकारी लोगों के सामने लिखती हैं, तो जो मॉडर्न लोग हैं, मैं बार बार ये शब्द का इस्तेमाल करता हूँ, मॉडर्न लोग, आजकल के काम धंधे में फंसे हुए लोग हैं जो परिवार चलाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको कितनी रुचि हो पाती है, उनको कितनी समझ इसके लिए मिल पाती है, या ये केवल अब बुक शेल्फ में रखने वाली चीज़ें हो गई हैं, या जो लिटरेरी फेस्टिवल्स होते हैं वहाँ डिस्कशन की चीज़ें हो गई हैं?
इसमें आप इस तरह वर्गीकरण कर सकते हैं कि हम हर युग में जिस समान रुचि के सारा समाज नहीं होता, जिसको आत्म तत्व की चाह होगी वो गाहे बगाहे पहुंच ही जाता है, और जो भौतिकता में लिप्त हो गए हैं तो फिर उनको कोई समझा भी नहीं सकता, तो फिर भोगते भी हैं वो। और कहीं भी भौतिकता में, कहीं भी माया मोह में, हमेशा एक कर्तव्य करिए। कौन कहता है कि काम नहीं करो, लेकिन मेंटली डिटैच रहने की एक कंडीशन होनी चाहिए आदमी को। होता क्या है कि हम खुद भी उसमें डूब जाते हैं और जो मेंटली अटैचमेंट है वो हमारे संस्कारों को बनाता है, वो हमें दुख देता है। तो मेंटली डिटैचमेंट वाली अवस्था में अगर आप आ जाते हैं तो सब आपके किए हुए कर्म भी स्वतः अकर्म हो जाते हैं, अर्थात उसके संस्कार नहीं बनते। इसको ज्ञानपूर्वक जीना कहते हैं।
एक निजी बात मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपके बारे में ये कहा जाता है कि आपने अपनी ये जो 16-17 किताबें अब तक लिखी हैं उनका 90% हिस्सा अपनी रसोई में, किचन में लिखा है, कि खाना बनाते हुए जो अगर सब्जी चढ़ा दी तो 10 मिनट मिले तो उस बीच में कुछ लिख दिया, और बर्तन साफ करते हुए कुछ समय मिल गया तो उस बीच में रख दिया, तो ये कैसे कर पाते हैं? और हमारे सुनने वाले में से बहुत से लोग कुछ लिखना चाहते हैं तो उनको कैसे प्रेरणा दे पाएंगे? ये वैसे भी अपने आप में प्रेरणा की बात है।
देखिए, मैं आपको बताऊँ कि जब आपने बात छेड़ी है तो मैं शुरू से आपको बताती हूँ। 70 ग्रंथों की जो आपने बात की, एक चित्त की अवस्था मेरी बढ़ती गई, तो मुझे जो मन की जो वृत्ति है उस पर मेरा ध्यान गया। उस पर मैंने कुछ लाइन लिखी थी कि सरहदें देह की हैं और बिना देह का मन जिसे चाहता है वहीं पर रहेगा, कि तन एक पिंजरा जहां चाहे रख लो कि मन का पखेरू तो उड़कर रहेगा। तो मेरा मन का पखेरू जो है सदा इसमें ही रहता था, तो मुझे घर के काम वगैरह कोई बाधा नहीं करते थे। तो काम करते करते मैंने वेदों का अनुवाद किया, वेदों के अनुवाद के बाद उपनिषदों का अनुवाद किया। उसमें ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक, ऐत्रेय, तैत्री और श्वेताश्वर का हरिगीति का छंद में अनुवाद किया। उसको एक एक, आप कहें तो मैं एक एक कण प्रसाद का देती चलूँ।
मृदुल जी, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
आपने बुलाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और श्रोताओं को मेरा नमन।
sbs.com.au/hindi पर जाएं और ऐसे अंश का आपकी भाषा में आनंद उठाएं।